जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय हो जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितई गौर हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर्थ श्री श्रीमदीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समस्त समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरियस द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 21, अध्याय का नाम है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। श्लोक संख्या 5 मेरे पीछे बोले। शंख द्वंद्व घोषेण ब्रह्म घोषेण चर्तिजाम विवेश भवनम वीरा स्तूयमानो गतस्मय। शंख द्वंद्व विघोषेण ब्रह्म घोषेण चर्तिजाम विवेश भवनम वीरा स्तूयमानो गतस्मय। शंख द्वंद्व विघोषेण ब्रह्म घोषेण चर्तिजाम विवेश भवनम वीरा स्तूयमानो गतस्मय। बोलिए। वैष्णव देवियां बोलिए। शब्दार्थ बोलिए। शंख शंख दुंदुभियों के घोषेण शब्द से ब्रह्मा वैदिक घोषेण उच्चारण से च भी ऋत्विजाम पुरोहितों के विवेश प्रवेश किया। भवनम महल में वीरा राजा स्तूयमानः पूजित होकर गतस्मय अहंकार रहित। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब राजा ने महल में प्रवेश किया तो शंख तथा दुंदुभियां बजने लगी। पुरोहित गण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे और बंदी जन विभिन्न प्रकार से स्तुति गान करने लगे। किंतु इतने स्वागत समारोह के बावजूद राजा पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। कैसा प्रभाव? कैसा प्रभाव? अहंकार। हाँ, रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा, अहंकार नहीं आया। अहंकार नहीं आया कि मैं कितना बड़ा हूँ, देखो मैं कितना बड़ा हूँ, कितना मेरा स्वागत हो रहा है, शंख घोष हो रहा है, दुंदुभि घोष हो रहा है और वैदिक मंत्रों का घोष हो रहा है, मैं कितना बड़ा हूँ। तो ये जो है गत इसमें, यहाँ गत माने गया हुआ है, गया हुआ है, आता नहीं है, चला जाता है। क्या इसमें? इसमें का मतलब अहंकार। तो अहंकार है ही नहीं महाराज, पृथ्वी के अंदर अहंकार है ही नहीं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, राजा का अत्यंत शानदार ऐश्वर्य ढंग से स्वागत किया गया, किंतु उन्हें किसी प्रकार का गर्व नहीं हुआ। अतः कहा जाता है कि शक्तिशाली तथा ऐश्वर्यवान महापुरुष कभी गर्व नहीं करते। इस प्रसंग में वृक्ष का उदाहरण दिया जाता है जो फूलों फलों से लदा होकर भी विनयशीलतावश नीचे झुक जाता है। प्रभुपाद जो है उदाहरण दे रहे हैं वृक्ष का। तो वृक्ष में क्या है, फूल फल जब होते हैं तो और झुक जाता है। तो यहाँ पर जो तुलना है वो बहुत बढ़िया दी है प्रभुपाद कि पृथु महाराज का जितना सम्मान हो रहा है उतना अधिक वो और विनम्र हो रहे हैं। पृथु महाराज का जितना अधिक सम्मान हो रहा है उतना अधिक वो और विनम्र होते जा रहे हैं। जैसे कि वृक्ष में जितने फल और लगते हैं तो वो उतना अकड़ता नहीं है बल्कि और झुकता है। तो जो महापुरुष होते हैं तो उनका जो है जितना भी सम्मान किया जाए तो उल्टा होता है, जो सामान्य व्यक्ति है उसको सम्मान मिलता है तो उसका घमंड बढ़ जाता है ना। लेकिन जो महान पुरुष है तो उसका जितना सम्मान होता है उतना अधिक वो और झुक जाता है और विनम्र हो जाता है। तो ये वृक्ष का उदाहरण बहुत बढ़िया है कि जितने फल और फूल लगते हैं उसमें तो उतना अधिक और वो झुक जाता है। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया ये कि अहंकार से सीधा तना हुआ नहीं रहता वृक्ष जो, ये महापुरुषों के चरित्र का विलक्षण गुण है। विलक्षण गुण मतलब बिल्कुल उल्टा है, महापुरुषों में ये बिल्कुल उल्टा प्रभाव पड़ता है। सामान्य व्यक्ति में जो है जितना उसका सम्मान होता है, स्वागत होता है, उतना देख उसका घमंड बढ़ता है ना। और महापुरुष का जितना सम्मान होता है, जितना स्वागत होता है, उतनी उसकी विनम्रता बढ़ती है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो हम श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि शंख दुंदुभि घोषेण, कि जब वो भवन में प्रवेश करते हैं, कौन भवन में प्रवेश करते हैं? पृथु महाराज। पृथु महाराज अपने भवन में प्रवेश करते हैं तो उनका जो है स्वागत होता है। सबसे पहला शंख घोष, शंखों की ध्वनि होती है उनके आगमन पर। शंख की ध्वनि ये सूचित करती है कि कोई बहुत विशेष कार्य, कोई बड़ा महत्वपूर्ण है, कोई कार्य होने वाला है। और सामान्य लोग, जितने लोग सुन रहे हैं आसपास के, वो आ जाएं तुरंत। तो ये जो है शंख ध्वनि का जो है ये अर्थ होता है। जैसे मंदिर में शंख ध्वनि होती है, भगवान का दर्शन होने वाला है तो शंख ध्वनि से जितने आसपास के लोग हैं। पहले तो घड़ी नहीं होती थी ना, घड़ी नहीं होती थी है कि घड़ी के से जो है समय से पहले भी आ जाते हैं और आना ही चाहिए। घड़ी है तो समय से पहले आई है, लेकिन घड़ी नहीं थी पहले, है ना। तो शंख की जब ध्वनि होती थी तो आसपास के लोगों को पता चलता था कि अब जो है भगवान का दर्शन खुलने वाला है, तो दौड़ते थे शंख ध्वनि सुन करके, है ना। और दुंदुभि घोषेण है, तो शंख ध्वनि होती है भगवान के दर्शन के समय, तो पृथु महाराज के लिए भी हुई। दुंदुभि की ध्वनि है वो राजाओं के लिए होती है, तो पृथु महाराज के लिए वो भी हुई। तो भगवान जैसा भी स्वागत हो रहा है, राजाओं जैसा स्वागत हो रहा है। और ब्रह्म घोषेण है, ब्रह्म घोषेण, ब्रह्म का मतलब वैदिक मंत्र, तो वैदिक मंत्रों का भी घोष हो रहा है, उच्चारण हो रहा है ना। तो ये भगवान के लिए होता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण भगवान का अभिषेक होता है या भगवान का जो है भगवान की सवारी निकाली जाती है तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। तो पृथ्वी महाराज का स्वागत जो है इतना विशेष हो रहा है ना, विवेश भवनम वीर है। तो यहाँ पर मुख्य बात क्या है कि भवन में उन्होंने प्रवेश किया और वीर वो वीर है। वीर उनकी वीरता किस बात में है कि उनको घमंड नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये भी भाव है कि उनकी वीरता किस बात में है कि वे इतने वीर हैं कि वे घमंड को जो है उन्होंने दूर रखा हुआ है अपने से, उनको घमंड नहीं आता है, तो ये भी वीरता है। विवेश भवनम वीरा स्तूयमान होंगे तस्मया, तो उनका जो है स्तमन हो रहा है, उनका जो है गीत गुणगायन गुणगान किया जा रहा है ना। अब यहाँ पर विशेष बात समझने की ये है कि ये अपने भवन में प्रवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, भवन से बाहर थे? हाँ, भवन से बाहर थे और काफ़ी समय के लिए भवन से बाहर थे। महाराज पृथु अपने भवन से बाहर गए थे, पहले से ही निश्चित हो गया था कि वे कब तक अपने भवन से बाहर रहेंगे। उन्होंने निश्चित किया था कि 100 अश्वमेध यज्ञ करना है, 100 अश्वमेध यज्ञ करना है। तो पिछले अध्याय में बताया गया है कि वे ब्रह्मावर्त में गए जहाँ सरस्वती नदी पूर्व दिशा में बहती है। तो ब्रह्मावर्त महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के अंदर है, ब्रह्मावर्त। तो उस स्थान में पृथ्वी महाराज गए और सरस्वती नदी जहाँ पूर्व दिशा में बहती है, तो अब तो सरस्वती नदी दिखाई नहीं पड़ती, कहीं कहीं दिखाई पड़ती हैं, नहीं तो लुप्त हो गई हैं। तो पृथ्वी महाराज जो है वहाँ पर गए थे और इनका महल या इनकी राजधानी, पृथ्वी के तो पूरी राजा हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं, इनकी राजधानी बृहस्मतिपुरी में है, बृहस्मतिपुरी में इनकी राजधानी है। तो वहाँ पर जो है ये आए हैं और अपने महल में प्रवेश कर रहे हैं और 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हुए या ना हुए, लेकिन समय तो पूरा लगा, 100 अश्वमेध यज्ञ का ही समय लगा। तो आप जानते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ के लिए कितना समय चाहिए? नहीं, 1 अश्वमेध यज्ञ के लिए कितना समय चाहिए? 1 साल, 1 साल 1 अश्वमेध यज्ञ में लगता है। तो 100 अश्वमेध यज्ञ में 100 साल, तो 100 साल के बाद आए, 100 साल के बाद आए पृथ्वी महाराज, है ना। और ये सत्युग का समय है, तो सत्युग के समय में 100 साल का जो समय है वो ज़्यादा नहीं होता है। अभी तो 100 साल में हम नहीं रहेंगे ना आप रहेंगे, ये 1 लाख साल की आयु होती थी, 100,000 साल, है ना। तो 100 साल का मतलब क्या हुआ कि 1,000 से अगर आप भाग दें 100 साल में, तो 1 साल के भी 10वां हिस्सा यानी 1 महीना करीब हुआ उस अनुपात में, कि भई हमारी आयु अगर 100 साल की है तो 1 लाख साल की आयु में 100 साल के बाद आए हैं, तो अभी 100 साल की अगर आयु है तो उसी अनुपात में अगर निकालें तो 1 महीना के बाद आए हैं पृथ्वी महाराज। 1 महीना भी बहुत बड़ा समय होता है, और जहाँ प्रजा बहुत प्रेम करे राजा से तो 1 महीने का समय बहुत बड़ा होता है। तो प्रजा जो है महाराज पृथ्वी का जो है बहुत स्वागत कर रही है और बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं, है ना। 100 साल पूरे लग गए, हालांकि 99 यज्ञ हुए थे, पृथ्वी महाराज के यज्ञ तो 99 हुए थे। और ये अश्वमेध यज्ञ एक विशेष यज्ञ होता है जिसमें घोड़ा जो छोड़ा जाता है उसको सब कुछ पता होता है कि पृथ्वी के कौन कौन से स्थानों में उसे जाना है, और वो समय की गणना भी करता रहता है कि वो कौन कौन से स्थानों में जा चुका है और कितना समय हो गया है, और 1 साल के बाद उसको उसी स्थान में वापस आना भी है। वो घोड़ा जो है उसको कोई आगे नहीं बढ़ाता है, उसको कोई हाँकता नहीं, उसके ऊपर कोई चढ़ता नहीं है, घोड़ा जो है अपनी इच्छा से चलता है और घोड़े की रक्षा में ही पूरी सेना चलती है। और जो यज्ञ करने वाला है वो घोड़े के साथ नहीं जाता, वो तो जो है यज्ञ के स्थान में ही बैठा है। पृथ्वी महाराज जो है घोड़े के पीछे नहीं जाते हैं, उनकी सेना जाती है और उनके सेनापति या पुत्र जो भी हो वो जाते हैं घोड़े की रक्षा के लिए, है ना। और 1 साल तक घोड़ा जो है सब स्थानों की यात्रा करके और ठीक 1 साल के बाद उसी स्थान में आएगा, वो उसको पता है, घोड़े को सब कुछ पता है। वे तो घोड़े को जो है मतलब केवल बोलते हैं कि घोड़े हाँ, अब तुम जो है अपनी इच्छा के अनुसार चलो, हाँ, तुम्हारी तुम्हें पता है कौन कौन से स्थान तुम जा चुके हो, कौन कौन से स्थान नहीं जा चुके हो, चलो। रात में जो है घोड़े को बांध देते हैं, हाँ, और जो है सेना विश्राम करती है, और सवेरे घोड़े को खोल देते हैं, तो फिर घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। अगर कोई राजा जो है घोड़े को पकड़ लेता है, क्योंकि वो चुनौती होती है, घोड़े के माथे में सोने का जो है पत्र है, जो है बंधा रहता है, उसमें लिखा हुआ है, जैसे पृथ्वी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, तो पृथ्वी महाराज ही पृथ्वी के जो है सार्वभौम सम्राट है। जो व्यक्ति इस बात को नहीं मानता है तो उस घोड़े को पकड़ ले, हम लोग इस घोड़े की रक्षा में हम बलपूर्वक इस घोड़े को छीनेंगे, युद्ध करते हैं और उस राजा को परास्त करते हैं, घोड़े को छीनते हैं, फिर घोड़े को छोड़ते हैं। इस तरह से घोड़ा जो है एक साल में उसी स्थान में वापस आता है। तो एक अश्वमेध यज्ञ में एक साल पूरा लगता है, और बिल्कुल पूरी गणना एक साल की होती है। उसके बाद फिर घोड़ा जब वापस आ जाता है, तो फिर उसकी आहुति डाली जाती है और यज्ञ पूरा होता है। इस तरह से 99 यज्ञ पूरे कर चुके हैं पृथ्वी महाराज, और 100वां यज्ञ भी पूरा हो चुका है, यानी एक साल की यात्रा घोड़ा कर चुका है। अब केवल हवन क्रिया रह गई है, तो उसी में ही इंद्र ने बाधा डाली। तो 100 अश्वमेध यज्ञ का समय तो पूरा हो ही गया, हालांकि 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हुआ, थोड़ी सी जो क्रिया होनी थी वो रह गई। तो अश्वमेध यज्ञ, और ऐसे में कोई भी व्यक्ति कितना व्याकुल होगा या परेशान होगा कि इतना परिश्रम किया एक साल तक, कि घोड़ा जो है सब जगह गया और सेना गई, इतना परिश्रम और इतने युद्ध किए, और बाद में फिर कोई बाधा डाले कि घोड़े को चुराए, और इंद्र जो है घोड़ा को चुरा रहे बार बार। लेकिन पृथ्वी महाराज ने जो है अपने क्रोध को भी नियंत्रित किया और इंद्र को भी क्षमा किया, तो उनका ये सब बहुत बड़े गुण हैं पृथ्वी महाराज के, और भगवान भी उनके गुणों से बहुत प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया। तो ये एक साल का समय पूरा बीत चुका है, पृथ्वी महाराज अपने भवन में प्रवेश कर रहे हैं। विवेश भवनम भी रहा स्तू मानो गतस्मय यहाँ है, तो उन्हें जो है अहंकार नहीं आ रहा है। तो इसी पर हमें आज विशेष चर्चा करनी है। तो ये भी बताया गया है कि विद्या ददाति विनयम, अगर किसी के पास विद्या है तो उसका सबसे पहला जो परिणाम है वो क्या होता है कि विनय आती है। विद्या ददाति विनयम, अगर किसी के पास विद्या है और विनय नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो विद्या का कोई अर्थ नहीं। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या भगवान ने अपनी विभूति बतलाई। अध्यात्म विद्या में आप अपने बारे में जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं शरीर नहीं हूँ, तो जब मैं शरीर नहीं हूँ मैं कृष्ण का सेवक हूँ, है ना, तो फिर घमंड नहीं आएगा। तो जो मतलब सबसे बड़ी जो विद्या है वो ये है। तो जब तक ये विद्या नहीं प्राप्त होती है और व्यक्ति शरीर से ऊपर नहीं उठता है, तब तक स्वाभाविक ही उसे घमंड आएगा, और विशेष रूप रजोगुण का प्रभाव है तो उसके अंदर घमंड आता है। तो ये बताया गया विद्या ददाति विनयम, विद्या का सबसे पहला जो लक्षण है वो यह है कि विनम्रता प्राप्त होती है। और गीता में भगवान ने कहा भी है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभ्यस्तने, कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ जो भगवान की सृष्टि में है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भी कैसा, जो विद्या विनय से संपन्न हो। विद्या विनय संपन्न है जिसके अंदर विद्या हो और विनम्रता हो, तपस्या विद्या और विनय, तो ब्राह्मण के जो है ये तीन स्तर होते हैं। एक तो है तपस्या, अगर तपस्या कर रहा है तो ब्राह्मण द्विज कहलाता है, और फिर तपस्या के साथ में अगर विद्या का भी अभ्यास करता है तो वो ब्राह्मण विप्र कहलाता है। और तपस्या और विद्या के साथ जब उसके अंदर विनम्रता भी आ जाती है तो वो ब्राह्मण वैष्णव कहलाता है। तो द्विज विप्र वैष्णव, ये ब्राह्मण के तीन स्तर हैं। पहला स्तर है द्विज का, तपस्या, दूसरा स्तर है विप्र, तपस्या और विद्या, और तीसरा स्तर है वैष्णव, तपस्या विद्या और विनय। तो भागवत में भगवान दुर्वासा मुनि को कहते भी हैं तपो विद्या से विप्राणाम नहीं श्रेयस करो भी, कि विप्रों के लिए तपस्या और विद्या बहुत कल्याणकारी है। लेकिन तएव दुर्विनीत, लेकिन दुर्विनीत है यानी विनय नहीं है। कल्पेते कर्तुम अन्यथा, तो उसका उल्टा ही परिणाम होता है। अगर विद्या तपस्या है और विद्या है लेकिन विनय नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण जब तक वैष्णव ना बने तब तक उसकी तपस्या और विद्या उसके लिए खतरनाक है, है ना। तो इसलिए वैष्णव बनना बहुत जरूरी है। और 13वें अध्याय में भी भगवान ज्ञान के 20 प्रकार के लक्षण बतलाते हैं। उनमें से सबसे पहला लक्षण क्या है? अमानित्वम। 20 प्रकार के जो लक्षण हैं उनमें सबसे पहला लक्षण क्या है? अमानित्वम, कि अभिमान ना होना। तो आप जो है शरीर से जब ऊपर उठते हैं तो आप शरीर की पहचान से आप ऊपर उठते हैं, तो सबसे पहला जो लक्षण है अमानित्वम, कि अभिमान ना हो। अमानित्वम अदम्भित्वम, फिर उसके बाद अदम्भित्वम, दम्भ भी ना हो। अभिमान होता है किसी को तो फिर अभिमान को वो दूर करता है तो दम्भ आ जाता है। दम्भ किस बात का? कि मेरे अंदर अभिमान नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है एक दूस अभिमान की दूसरी स्थिति है, दूसरा रूप हो गया कि मेरे अंदर अभिमान नहीं है। देखो तो इसको क्या कहते हैं? दम्भ। तो दम्भ भी ना हो। आपने अभिमान का त्याग कर दिया तो फिर ये भाव आ गया कि देखो मेरे अंदर अभिमान नहीं है, मैं कितना महान हूँ, मेरे अंदर अभिमान नहीं है। तो ये भी अभिमान का एक दूसरा रूप है, इसे क्या कहते हैं? दम्भ, दिखावा करना कि मेरे अंदर अभिमान नहीं है। अमानित्वम अदम्भित्वम, बहुत सूक्ष्म है विषय है ये। तो गीता में भगवान जो है क्रम से बताते हैं कि अभिमान तो नहीं रहा ये, फिर दम्भ आ गया आपके अंदर कि मेरे अंदर अभिमान नहीं है, है ना। तो ये भी जो है सूक्ष्म है अभिमान है, दम्भ। तो इस तरह से जो है बहुत सूक्ष्म विषय है ये। इस श्लोक का जो हिंदी में पद्यानुवाद किया है एक विष्णुप्रिया देवी हैं, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। शंख और दुंदुभी आदि बाजे वहाँ बजने लगे, ऋतु जन सब मिलकर वेद ध्वनि करने लगे, बंदी जन ने भी वहाँ स्तुति गान आरंभ किया, ये सब देख और सुनकर भी नहीं अहम भाव प्रथमे हुआ। इस विधि वीरवर राजा ने महल में अपने प्रवेश किया, उनके स्वागत में जिसका हर कोना ही था सजा। तो जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के अंदर रजोगुण है, रजोगुण में ये सब आता है दोष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो मद का मतलब घमंड, तो ये सब रजोगुण के कारण आता है। तो जब तक हम रजोगुण में रहते हैं तो ये सब भाव जो है ये आएंगे ही, है ना। तो ब्रह्मा जी को भी चिंता है, ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य जब करते हैं तो उनको चिंता होती है, तो भगवान से वो प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं कि मैं सृष्टि का कार्य करूँगा तो मेरे अंदर घमंड आएगा, क्या भाव आएगा, कि मैं ही सबको बनाने वाला हूँ, मैं ही प्रजापति हूँ, और वे सब जो है मुझे नमस्कार करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, और वे जानेंगे भी नहीं कि मेरे से बड़ा कोई है। तो ऐसे में मेरे अंदर क्या भाव आएगा कि सर्वेश्वर मैं ही हूँ। तो ब्रह्मा जी भी जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। स्कंद पुराण में ये भागवत महात्म का श्लोक है, तो या सर्गे नियुक्तोऽस्मि पापी यान में रजोगुण, कि जब आपके द्वारा आपके आदेश से मैं सृष्टि के कार्य में लगूंगा तो जो पापी रजोगुण है तो स्मृतो नैव बाधित है, आपकी स्मृति में बाधा ना डाले। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी स्मृति में बाधा ना डाले, तो ये घमंड जो है भगवान की स्मृति में बाधा डालता है ना, कि जब हम भगवान की स्मृति करते हैं तो घमंड फिर नहीं हो सकता, कि भगवान की स्मृति करते हैं कि कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं, भगवान के सिवा और कोई हमारी कठिनाइयां दूर नहीं कर सकता। भगवान का जो स्मरण है उसी प्रकार से होता है, है? अगर कोई सफलता भी प्राप्त होती है तो कोई भगवान का स्मरण करता है तो क्या सोचता है कि ये सफलता सब जो है कृष्ण की कृपा से मिली है, और जहाँ कृपा नहीं रहेगी तो सब मिट जाएगा, सब दूर हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो कृष्ण का स्मरण जब करता है व्यक्ति तो घमंड नहीं होता, और घमंड होता है तो कृष्ण का स्मरण नहीं होता, फिर तो करता हम इति मन्यते, ये मैं कर रहा हूँ है? और ये मेरा गुण है, ये मेरी योग्यता है, ये मैं कर रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि रजोगुण जो है आपकी स्मृति में बाधा ना डाले। तथैव कृपया प्रभो यदा तू भगवान तस्मै श्रीमद् भागवतम पुरा, तो समय भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत प्रदान किया। उपदिश्य ब्रवीत ब्रह्मन् सेवस्वनत स्वसिद्धये, तो उन्होंने कहा कि इसका सेवन करो, भागवत का सेवन करो स्वसिद्धये, आत्म साक्षात्कार को सिद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत का सेवन करो। ब्रह्मा तो परम प्रीतस तेन कृष्णाप्तये निशम, तो ब्रह्मा जी ने भी परम प्रीति से कृष्ण की प्राप्ति के लिए नित्य सप्तावरण भंगाय सप्ताहम समवर्तते, सप्त आवरण का भंग करने के लिए सप्ताह का भागवत सप्ताह किया। तो ब्रह्मा जी ने श्री भागवत सप्ताह सेवनात् सेवनाप्त मनोरथा सृष्टि वितुनते नित्यम स सप्ताह पुनः पुनः, तो उन्होंने जो है सप्ताह का सेवन किया, श्रीमद् भागवत सप्ताह का सेवन किया, और प्रतिदिन वे सृष्टि करते हैं है? और भागवत का सप्ताह भी करते हैं। तो भागवत सप्ताह की जो विधि है वो आजकल की जैसी नहीं होती है, ये आजकल भागवत सप्ताह के नाम पर तो भागवत सप्ताह थोड़ी होता है, भागवत के सप्ताह का नाम होता है लेकिन भागवत सप्ताह होता ही नहीं। भागवत सप्ताह का तो मतलब होता है कि 7 दिनों में जो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक हैं वो मूल पाठ किया जाए, मूल पाठ किया जाए और स्वर के सहित अच्छे स्वर में स्पष्ट स्वर में सबको सुनाई पड़े। 2 प्रहर तक जो है लगातार श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ किया जाए, और ये उस समय के लिए था जब लोग संस्कृत समझते थे तो किसी व्याख्या की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सब हमको समझ में आता था। और शाम की कथा में वो उसी सवेरे का जो विषय है उसको समझाते थे अपने शब्दों में। तो ये भागवत सप्ताह की विधि है। तो ब्रह्मा जी जो है भागवत सप्ताह करते हैं और इस प्रकार से वो जो है सृष्टि में वे जो है अहंकार से बाधित नहीं होते, अहंकार की बाधा नहीं आती है और भगवान का स्मरण कर पाते हैं। कुंती देवी विपत्तियां मांगती हैं, कुंती देवी विपत्तियां मांगती हैं, क्यों? इसीलिए कि घमंड ना आए। कुंती देवी कहती हैं विपदा संत ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, ये विपत्तियां हमारे जीवन में समय समय पर आती रहें, भवतो दर्शनम यत्स्यात्, विपत्तियों में हमें आपका दर्शन होता है, विपत्तियों में आपका दर्शन होता है, क्यों? कि कृष्ण के अलावा और कोई अब छुड़ाने वाला नहीं है इन विपत्तियों से, तो विपत्तियों में हमें आपका दर्शन होता है। और संपत्ति में क्या होता है आपको हम भूल जाते हैं, संपत्तियों में तो अपना गुण मानते हैं कि मेरा गुण है, इतनी संपत्ति जो मिली तो मेरा गुण है, जब विपत्ति आती है तो फिर समझ आता है कि कृष्ण के बिना मैं इन विपत्तियों को पार नहीं कर सकता, तो कृष्ण का स्मरण करते हैं, विपत्ति से छूटने के लिए ही तो कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो कुंती देवी क्यों कहती हैं विपत्तियां हैं, ताकि विपत्तियों से छूटने के लिए हम कृष्ण का स्मरण करें, आपका स्मरण करें। तो एक विधि ये भी है अहंकार से छूटने की कि विपत्ति मांगे। कुंती देवी कहती हैं कि संपत्ति में जो है मद कैसे बढ़ जाता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एदमान मदापमान, 4 कारण से जो मद है, मद यानी घमंड, ये एदमान हो जाता है। एदमान का मतलब क्या है, जैसे आग, आग में ईंधन डाले हैं तो आग प्रज्वलित हो जाती, तो उसको कहते हैं एधमान। ईंधन से बना है एधमान, आग एधमान हो गई, मतलब ईंधन डाला तो एधमान हो गई, मतलब प्रज्वलित हो गई ना। तो जो घमंड की आग है इसका ईंधन क्या है? जन्म ऐश्वर्य स्तुत श्री, चार चीजें। एक तो उच्च कुल में जन्म हुआ हमारा, तो ये ईंधन का काम करता है हमारे घमंड रूपी अग्नि का। घमंड हमारी अग्नि है और ईंधन क्या हो गया? हमारा जन्म हुआ अच्छे कुल में, तो जन्म ये से जो है घमंड एधमान हो जाता है। जन्म ऐश्वर्य धन संपत्ति ये भी ईंधन का काम करती है। और श्रुत, श्रुत का मतलब है विद्या, बहुत शिक्षा, ईंधन का काम करती है। और श्री और सुंदरता, तो जन्म यानी उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ, ऐश्वर्य धन संपत्ति और शिक्षा और सुंदरता। एधमान मदापमान नैवर हति अभी धातुम वे, तो आपको फिर वो देख नहीं पाता है। एधमान जो मद है तो वो जो है उसकी आंखों को ऐसे ढक देता है कि वो आपको नहीं देख पाता। नैवर हति अभी धातुम वे त्वाम किंचन गोचरम, क्योंकि आप तो अकिंचनों के गोचर हैं। अकिंचन, किंचन का मतलब कुछ और आ लगा दिया, नहीं कुछ नहीं। अकिंचन का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है। अकिंचन गोचरम, उसको आप दिखाई पड़ते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है, है? तो वो आपको ही सब कुछ मानता है। निर्धन के धन, निर्बल के बल। तो जिसके पास कुछ नहीं है उसके सब कुछ फिर आप ही है। अकिंचन गोचरम, तो आप तो अकिंचन गोचर हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर हमें प्राप्त होती हैं तो इससे मद बढ़ जाता है। एधमान मदापमान। तो कुंती महारानी ये नहीं कहती कि ये सब चीज़ें ना मिलें, ये तो सब चीज़ें मिली हैं, उनको मिला है। ऊंचे कुल में जन्म में हुआ है, धन संपत्ति भी है और शिक्षा भी है और सुंदरता भी है, सब कुछ है। लेकिन कुंती महारानी ये नहीं कहती कि ये सब चीज़ें दूर हो जाएं, बल्कि इनके साथ साथ क्या मिले? विपत्तियाँ भी मिलें। तो एक विधि ये भी है, ये सब चीज़ें रहेंगी, हाँ, कुलीनता है, धन संपत्ति है, सुंदरता है, शिक्षा है, ये सब रहेंगी। ये साथ साथ विपत्ति भी अगर रहेगी तो फिर घमंड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरी इतनी शिक्षा है, मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, फिर विपत्तियाँ क्यों आ रही हैं? इसका मतलब सब बेकार है, किसी की सेवा और कोई नहीं है रक्षा करने वाला। तो कुंती महारानी जो है इन चारों चीज़ों के साथ साथ पांचवी चीज़ क्या मांग रही हैं? विपत्ति। तो विपत्ति में जो है फिर भी आंखें खुली रहेंगी, है ना। और ये बताया गया है कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो असाधु, दूसरा साधु। अगर बड़े मोटे तौर में अगर विभाजन किया जाए तो दो प्रकार के लोग हैं, एक तो खल और दूसरा साधु, है ना। तो खल के पास जो है अगर विद्या आती है तो उसका परिणाम क्या होता है? विवाद, वो बहस करेगा लोगों को जो है, लज्जित करने के लिए, लोगों को परास्त करने के लिए वो जो है तर्क वितर्क करता है। विद्या विवाद आए, खल के पास अगर विद्या आती है तो वो फिर क्या करता है? विवाद करता है। और कोई भी बात होगी वो काटेगा, खंडन करेगा, आपकी बात का खंडन करेगा, आपको परास्त करने की कोशिश करेगा। विद्या विवाद आए, धनम मद आए, और धन अगर उसको आता है तो उसमें घमंड, फिर वो नीचे की तरफ देखता नहीं, आकाश की तरफ देखता है, है ना। धनम मद आए, शक्ति ही परेशान परपीट ना आए। अगर शक्ति आ जाए उसके पास तो दूसरों को पीड़ा पहुँचाने में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। खलस साधु विपरीत मेतर, और साधु के पास ये तीन चीजें आए, क्या? विद्या, धन और शक्ति, तो उल्टा परिणाम होता है। ज्ञान आए, दान आए, चरक्षण आए। जो विद्या है साधु के पास आती है तो वो ज्ञान देता है, लोगों को बांटता है, ज्ञान आए। और धन आता है तो दान करता है, और शक्ति आती है तो रक्षा करता है, जो साधु हैं साधुओं की रक्षा करता है। निर्बलों की रक्षा करता है। तो खल और साधु ये दो प्रकार के लोग होते हैं, तो इनमें जो है कोई भी चीज़ आती है तो इसके विपरीत परिणाम होते हैं। विद्या अगर खल के पास आती, दुष्ट के पास आती है, तो वो विवाद करता है अपनी विद्या दिखाने के लिए, और धन धन दिखाने के लिए जो है वो बहुत दिखावा करता है कि देखो मेरे पास इतना धन है, देखो। फिर वो कई तरह के आयोजन करता है दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना धन है। और शक्ति आती है तो क्या करता है, अपनी शक्ति दिखाता है, तो आपको पीड़ा पहुंचाएगा वो अपनी दिखाने के लिए, देखो मेरे पास शक्ति है। और साधु के पास उल्टा है, विद्या अगर विद्या होती है तो ज्ञान देता है लोगों को, ज्ञान देता है, और धन अगर आता है तो दान करता है, योग्य देश से काले चा पात्रे चा। और शक्ति आती है तो रक्षा करता है। तो तीन प्रकार के मत बताए गए हैं, विद्या मदो धन मदस तथैवाभिजनो मदहा एते मदा मदांधा नाम तएव ही सताम दमा। ये बताया गया है कि तीन प्रकार के मद हैं, एक तो विद्या मद, विद्या का मद, मद का मतलब नशा घमंड, एक तो विद्या का मद है, दूसरा धन का मद होता है, और तीसरा अभिजन मद, अभिजन मेरे बहुत से अनुयायी, इसका मद होता है ना। तो तीन प्रकार के मद हैं, किन के लिए, मदांधा नाम, मदांधा नाम जो मत से अंधे हैं उनके लिए तीन प्रकार के मद होते हैं। तए भी सताम दमा, लेकिन सत्पुरुषों के लिए तीनों दम हो जाते हैं। मद का उल्टा क्या है, दम, अक्षर का क्रम अगर उल्टा कर दें तो मद का क्या हो गया है, उल्टा दम हो गया। तो सत्पुरुषों के लिए तीन ये दम होते हैं। दम का मतलब क्या है, उनकी इंद्रियां और बस में होती हैं, तो विद्या अगर आती है तो उनका और दम बढ़ जाता है, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण और बढ़ जाता है विद्या के द्वारा। तो दो प्रकार के लोग हैं, तो जो दुष्ट है उसके पास विद्या आती है तो उसका मद बढ़ जाता है, लेकिन जो साधु है सत्पुरुष है उसके पास विद्या आती है तो उसका दम बढ़ जाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ जाता है। धन मदस, और दूसरा धन का मद, लेकिन सत्पुरुषों के लिए धन का दम बन जाता है, दम, उसकी इंद्रियां और बस में होती हैं, उसके बाद धन जितनी धन संपत्ति बढ़ती है उसकी इंद्रियां और नियंत्रित होती हैं। तथा अभिजनो मदा, और उसके अनुयायी बढ़ते हैं, अनुयायी बढ़ते हैं, तो जो दुष्ट है उसके अनुयायी बढ़ते हैं तो उसको मद होता है, मद होता है, और जो सत्पुरुष है उसके अनुयायी बढ़ते हैं, अनुयायियों की संख्या बढ़ती है तो उसका और दम बढ़ता है, उसकी इंद्रियों का नियंत्रण और ज़्यादा होता है। तो ये जो है इस तरह की कुछ चर्चा हमने की है। जैसे इंद्र को जो है घमंड हो रहा है, ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो इंद्र को घमंड हो रहा है, तो भगवान ब्रज में, ब्रजवासियों के बीच में, तो वो देख रहे हैं कि इंद्र को घमंड हो रहा है, तो ये तो भगवान ही देख सकते हैं, ब्रजवासी तो नहीं जान सकते, और ब्रजवासियों में तो विनम्रता है, और वो तो इंद्र की पूजा कर रहे हैं, कर्तव्य भावना से कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई दोष नहीं था, लेकिन इंद्र में जो घमंड बढ़ रहा है तो भगवान को अच्छा नहीं लग रहा। ये यज्ञ जो इंद्र का तैयारियां हो रही हैं, इंद्र की पूजा की, वो भगवान को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि भगवान को अभिमान से नफरत है। ईश्वरस्याभिमान द्वेषत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, दीनता प्रिय है ईश्वर को अभिमान से द्वेष, तो भगवान को जो है इस पूजा से द्वेष हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर भगवान ने जो है जब पूजा बंद कराई तो ये नहीं कहा कि इंद्र की तुम लोग पूजा क्यों कर रहे हो, मैं तो करोड़ों करोड़ों इंद्रों से भी बढ़कर के हूँ, मैं तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। अगर भगवान भी अगर ऐसी बात बोले तो इंद्र की ही तरह फिर वो भगवान का भी तो भाव हो गया ना? तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो, इंद्र क्या है मेरे सामने, है ना। तो भगवान भगवान ने ये बात नहीं कही, भगवान तो कहते हैं कि हम लोग जो है वनवासी हैं, हम सब लोग वनवासी हैं। भगवान ब्रजवासियों के बीच में ऐसे एक मतलब हो गए हैं, बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं, हम लोग तो वनवासी हैं है? और वनवासियों के लिए जो है आवश्यकता क्या होती है, उनकी गौएं हैं तो गौओं को घास मिलती है, पानी मिलता है, झरना मिलता है, तो गोवर्धन पर्वत से जो है हमारी सब आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है कि इंद्र क्या करते क्या नहीं करते हैं, हम पर्वत की पूजा करते हैं, हम तो वनवासी हैं। तो भगवान ने जो है इंद्र की पूजा बंद भी करवाई, लेकिन उस तरह के भाव में नहीं बंद करवाई कि मैं इंद्र से बढ़ करके हूँ, इस भाव में नहीं कराई है। तो भगवान जो है भक्तों के साथ जब लीलाएं करते हैं तो भगवान में जो है बहुत विनम्रता है, भगवान की विनम्रता बढ़ती है, भगवान का जितना पूजन होता है, भगवान का जितना गुणगान होता है, भगवान के अंदर और विनम्रता बढ़ती है, वो भक्तों के और ज़्यादा वशीभूत होते हैं, भक्तों के प्रति और ज़्यादा वत्सल होते हैं, भक्तों के प्रति और ज़्यादा विनम्र होते हैं, तो ये भगवान का ऐसा गुण है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की है इस विषय में, क्योंकि प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य इसी विषय में लिखा गत इसमें कि पृथु महाराज को घमंड नहीं आया। तो मुख्य बात यही है कि अगर हम शरीर से ऊपर उठते हैं और अपनी पहचान करते हैं जीव जो कि शरीर नहीं है, शरीर से अलग है, और फिर भगवान का अंश है, और अंश का कार्य अंश की सेवा करना, मैं भगवान का सेवक हूँ, तो उसके अंदर फिर घमंड नहीं आएगा। लेकिन अगर तीन गुणों से ऊपर नहीं उठता है तो रजोगुण जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये कुछ न कुछ जो है वो पैदा करता ही है, ये छह शत्रु हैं, छह शत्रुओं में से एक मद भी है ना। तो रजोगुण से ऊपर उठने के लिए जरूरी है कि हम जो है भक्ति का अभ्यास करें। नष्ट प्राय सुभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिक तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दियस्य। तो रजोगुण तमोगुण के भाव जो है उनसे चेत चित्त आविद्ध नहीं होगा, स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, सत्वगुण में प्रसन्न हो जाता है चित्त। तो सत्वगुण में आने के लिए भी नित्यम भागवत सेवया ये जो है बताया गया है, और प्रभुपाद के जीवन में जो अंतिम शिक्षा है वो ये है कि सवेरे की जो साधना है वो करिए सत्वगुण में आने के लिए। तो मुख्य बात यही है रजोगुण से हमें कैसे ऊपर उठना है और सत्वगुण में आना, इससे जो है फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये इनकी बाधा नहीं होगी। तो ये जो है आज का विषय है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, मोहन रूपा प्रभु और किस, हाँ प्रभु हैंड माइक तो नहीं है, हैंड माइक, अच्छा तब तक बोलिए आप।
पृथु
महाराज ने 99 यज्ञ किए थे तो उनको बार बार घोड़ा छोड़ना पड़ा था। हाँ
तो ऐसा क्यों, एक बार छोड़ दिया था लोगों ने मान लिया वो सम्राट है, तो दोबारा,
इनका प्रश्न है कि ऐसा क्यों एक बार छोड़ दिया घोड़ा तो लोगों ने मान लिया कि वो सम्राट है। ऐसा होता है कि दूसरी बार घोड़ा छोड़ा जाता है तो कई बार ऐसा है कि घोड़ा जब उनके राज्य में पहुंचा, किसी राजा के राज्य में पहुंचा घोड़ा, उस समय वो राजा नहीं मिला तो घोड़ा तो इंतजार नहीं करेगा कि भाई राजा है कि नहीं है, वो तो जाता है, हैं? और कोई अगर नहीं पकड़ता है, कोई नहीं देखता है तो घोड़े की फिर ये चिंता नहीं होती कि भाई देखो मुझे, लेकिन वो जाता है और पूरा अवसर देता है कि भाई देख लो मैं हूँ, है ना। लेकिन कई बार ऐसा है कि वो राजा नहीं मिला, कहीं चला गया, तो दूसरी बार छोड़ा जाता है, तीसरी बार छोड़ा जाता है। सो अश्वमेध यज्ञ, और इस अश्वमेध यज्ञ में एक विशेषता ये भी है कि जो यज्ञ करने वाला जो होता है, यजमान होता है, तो वो अगर असीपत्र व्रत का पालन करे, अच्छा अच्छा हैंड माइक कहीं पर है, असीपत्र व्रत का पालन करे एक साल तक, तो फिर वो पूरी पृथ्वी को पवित्र कर देता है, पूरी पृथ्वी को पवित्र कर देता है। असीपत्र व्रत का मतलब है कि अपनी पत्नी के साथ वो एक ही शैया पर शयन करे और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो ये असीपत्र व्रत कहलाता है। तो अगर राजा जो है अगर ये करे अश्वमेध यज्ञ एक साल तक, तो वो पूरी पृथ्वी को पवित्र कर देता है, पूरी पृथ्वी की चेतना को पवित्र कर देता है। तो ये पृथु महाराज ने जो है ऐसा यज्ञ किया। तो ऐसे सब लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे इंद्र जो बनते हैं तो वो ये नहीं कर सकते, इंद्र नहीं कर सकते ऐसा यज्ञ, नहीं तो भी इंद्र का पद मिल जाता है उनको। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक यज्ञ भी करता है ऐसा, तो वो 100 यज्ञों से भी ज़्यादा बढ़ करके होता है, पवित्र होता है।
ऐसा लॉजिक तो ठीक नहीं है कि
चलो हो गया थोड़ी देर में चालू होता है ना।
ऐसा लॉजिक तो ठीक नहीं है कि एक बार छोड़ा 50 बार छोड़ा तो कोई नहीं मिलाता, लोगों को पता होगा ना कैसे गेट हो रहा है तो राजा नहीं मिला।
नहीं, यज्ञ जो है अपने आप में बहुत पवित्र है। यज्ञ जो यज्ञ के जो कार्य है तो इसमें राजा की अपनी श्रेष्ठता तो सिद्ध होती है कि वे राजा चक्रवर्ती सम्राट हैं, श्रेष्ठता तो सिद्ध होती है। लेकिन ये भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, ये जो यज्ञ है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। केवल ये उद्देश्य नहीं होता यज्ञ का, अश्विन यज्ञ का, कि भाई मैं अपनी श्रेष्ठता स्थापित करूँ, ये नहीं होता है। वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। और उसमें फिर देवताओं को आहुतियाँ भी दी जाती हैं, देवता लोग स्वयं आकर के अपना भाग लेते हैं। अगर बहुत श्रेष्ठ भाव से अगर किया जाता है तो वो आहुतियाँ अग्नि में ना डाल करके अपने हाथ में देवता लोग लेते हैं, तो वहाँ देवता लोग भी आते हैं। तो ये बहुत बड़ा ये जो है कार्य है। त्रेता युग में तो बताएगा कि त्रेतायाम यस्तोमक है, भगवान की पूजा यज्ञों के द्वारा ही होती है, है ना। तो केवल ये उद्देश्य नहीं है कि पूरी पृथ्वी में मैं सार्वभौम सम्राट हूँ, लोग ये जान लें। ये तो जो है एक ये भी इसमें उद्देश्य होता है, लेकिन बड़ा उद्देश्य होता है भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है, अच्छा, और किसी का प्रश्न है तो एक व्यक्ति बार बार प्रश्न करें। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत धन्यवाद, बड़ा ही सूचनाजनक प्रवचन दिया आपने। प्रश्न ये है कि मध्य तो इतना सूक्ष्म है कि शायद हम कभी भी भगवान के धाम लौट ना पाएं, और अगर हम धाम लौट भी गए तो भौतिक संसार में वापस आने का क्या कारण है। देखिए, पहली बात ये है कि सूक्ष्म तो है, लेकिन रजोगुण जो प्रकृति के तीन गुण हैं उनमें रजोगुण से कारण, रजोगुण के कारण होता है। भगवान गीता में कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण संबंध हुआ, रजोगुण से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और रजोगुण से आप ऊपर उठ सकते हैं, अगर आप उस कारण से ऊपर उठ गए तो फिर वो कार्य होगा ही नहीं। आप समझ रहे, रजोगुण के कार्य हैं, है ना। तो रजोगुण के कारण अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो आप रजोगुण से ऊपर उठिए तो सतोगुण में आइए, है ना। फिर लिखा है धाम लौट गए तो भौतिक संसार में वापस आने का क्या कारण है। देखिए, ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाता है, नहीं इसका उत्तर ये है कि अगर हम भगवान के धाम लौट जाते हैं तो हम वापस नहीं आते हैं। हम भौतिक संसार में गिरे हैं ये अलग बात है, और भगवान के धाम जा करके वापस नहीं आएंगे दूसरी बात है। जैसे कोई कुएं में गिर गया, ठीक है, तो अलग बात है, कुएं में गिर गया, अब आप उसको निकालते हैं, है ना, तो वो दोबारा नहीं गिरेगा कुएं में, तो ये दूसरी बात है ना। हैं, कोई कुएं में गिरा है, हैं, और आप उसको निकालते हैं, हैं, और वो कहता है मुझे निकालो, आप कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं निकालूंगा, तुम तो दोबारा गिरोगे, तो वो क्या कहेगा, नहीं मैं नहीं गिरूंगा दोबारा। तो ये तो आपका ही विश्वास है कि आप दोबारा नहीं आओगे इस संसार में, ठीक है ना। फिर लिखा है 8वें अध्याय में तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो एक बार मेरे धाम आ जाता है लौट कर फिर भौतिक संसार में नहीं आता, तो फिर हम कैसे आ गए। ठीक है, इसका उत्तर मिल गया ना, कि आप जो है एक बार आग में हाथ डालते हैं तो दोबारा आप नहीं डालते हैं, आपको अनुभव हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और कोई हाँ, कोई राजा जो है अश्वमेध यज्ञ घोड़े को पकड़ लेता है तो बहुत बड़ी बाधा हो जाती है, और युद्ध भी मतलब करना होता है और उसको जो है पराजित करना होता है, और फिर कई बार तो वो अपने अपने महल में रोकता भी है, ठहराता भी है सम्मानपूर्वक। जो राजा पराजित हो गया है वो बहुत खुशी खुशी सेना को ठहराता भी है, 2 दिन 3 दिन ठहरते भी हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन घोड़े को जो है सब कुछ पता है कि उसको कहाँ कहाँ जाना है और सब रास्ते और समय का पूरा अंदाजा रहता है घोड़े को।
तो कभी ऐसा कोई दृष्टांत हुआ कि इसमें लेट हो गया घोड़ा?
अगर घोड़ा लेट हो गया तो उस यज्ञ की फिर चर्चा ही नहीं होती है, ठीक है ना, उस यज्ञ की चर्चा नहीं होती है, है ना, क्योंकि ये घोड़ा, ये अश्वमेध यज्ञ जो है ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बाधाएं हैं, भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, बहुत बाधाएं, इसमें बहुत बाधाएं, तो भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता ये। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े जो भक्त राजा हुए हैं उन्होंने किए हैं, तो भगवान की ही कृपा से कर पाते हैं ये। और आपका प्रश्न? हाँ, इनको चालू।
हरे कृष्ण प्रभु, मेरा प्रश्न आज से रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कलयुग की अवधि है उसका एक डेट फिक्स है कि अब इस दिन होगी, इस दिन इसका अंत होगा कलयुग का। तो ये जैसे कि रात 12 बजे के बाद कलयुग जैसे कि इंडेक्स जा रहा था, तो वैसे कलयुग का जो डेट फिक्स है आज ही कलयुग का अंतिम दिन है, अंतिम तिथि है, तो कल क्या हो जाएगा? सबसे जल्दी
सत्ययुग, हाँ, कलयुग के बाद सत्ययुग जब प्रारंभ होता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। सत्ययुग के बाद त्रेता आता है तो इतना परिवर्तन नहीं है, हाँ, क्योंकि सत्ययुग से त्रेता, सत्ययुग के प्रारंभ में जैसे आयु 1,00,000 साल की है, तो घटती घटती सत्ययुग के अंत में 10,000 साल की आयु होती है। तो त्रेता जब शुरू होता है तो 10,000 साल की आयु से शुरू होता है, और फिर आयु घटते घटते फिर त्रेता का जब अंत आता है तो 1,000 साल की आयु होती है, तो फिर द्वापर जब शुरू होता है तो 1,000 साल। तो इससे जो है मतलब कुछ अंतर नहीं पड़ता कि कोई युग परिवर्तन हुआ, क्योंकि जहाँ पर वो युग समाप्त होता है वहीं से अगला युग शुरू होता है। लेकिन सत्ययुग जब समाप्त, कलयुग जब समाप्त होता है तो आयु 100 साल से आयु घटते घटते 20 साल की हो जाती है, और अगले दिन एकदम से 1,00,000 साल की आयु। इसी प्रकार के सब कुछ, मतलब धर्म के भी चारों चरण टूट गए और एकदम चारों चरण आ जाते हैं धर्म के, तो बहुत बड़ा अंतर है। तो ये बहुत विशेष घटना कहलाती है जो कलयुग जब शुरू होता है। ठीक है, आपका प्रश्न? हाँ, इनको माइक दीजिए।
सर, जो यज्ञ की प्रवृत्ति है जब हम, वो क्यों है?
क्या
बोल रहे हैं कि
इतना समय आपने लगा दिया, साफ साफ सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप थोड़े शब्दों में बोलिए और स्पष्ट बोलिए कि सुनाई पड़े, तो इतना टाइम इसमें खराब हुआ और कुछ समझ में नहीं आया। अश्वमेध यज्ञ
प्रवृत्ति क्यों है?
प्रवृत्ति क्यों है? देखिए, जो भक्त होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, तो उनका जो कार्य, युद्ध का जो कार्य है, अपने आप में बहुत पवित्र होता है। युद्ध में अगर वो मारे भी जाते हैं, है ना, और वो गुस्सा से जो है वो किसी शत्रु पर प्रहार करते हैं और उसमें वो मारे भी जाते हैं, तो उससे भी उनकी सबसे बढ़िया गति होती है। क्षत्रियों के लिए युद्ध सबसे पवित्र कार्य कहलाता है। और ऐसे में अगर मृत्यु होती है और इसके अंदर कुछ भौतिक कामना नहीं है तो भगवान के धाम भी जा सकता है, नहीं तो स्वर्ग की प्राप्ति तो कम से कम है ही है। ठीक है, क्षत्रियों के लिए ये जो युद्ध है, युद्ध भगवान कहते हैं सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभंते युद्धम ईदृशम, कि जो बड़े भाग्यशाली क्षत्रिय हैं उनको ही ऐसा युद्ध प्राप्त होता है, आप समझे। तो युद्ध का जो कार्य है क्षत्रियों के लिए ये जो है बहुत पवित्र कार्य है। ठीक है, और कोई? प्रद्युम्न प्रिया, ठीक है, पहले प्रद्युम्न प्रिया बोलिए।
तो मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, जिसने कि प्रभु जी ने मुझको कहा कि नहीं ये विषय नहीं है क्लास का, परंतु मैंने यही समझा कि ये सूचना मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रभु जी से हमें श्लोकों का जो है सार तत्व तो समझ में आता है, पता लगता है, अवसर मिलता है समझने का श्लोकों का अच्छे से। तो मैं बताना चाहता था कि कल प्रभु जी का जो है ऑपरेशन होने जा रहा है घुटनों का, सवेरे 7 बजे, तो उसमें मैं कुछ बताना चाहूँगा जिसमें कि श्री प्रभुपाद और सत्य ही मतलब जो है उसका आधार है। कि परसों जो है श्री प्रभुपाद जी का लेक्चर हुआ था, जिसमें कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह गहरी सुप्त अवस्था कहलाती है जिसमें व्यक्ति का ऑपरेशन करा जाता है तथा उसे पता नहीं चलता कि उसके शरीर पर औजार चलाए जा रहे हैं और दो तीन दिन बाद ये मतलब सोमवार को होने जा रहा है कल ऑपरेशन होने का, और उससे पहले ही जिस दिन प्रभुपाद जी का लेक्चर था शुक्रवार को, तो वीरवार को ही प्रभु जी साक्षी माधव प्रभु जी के पास प्रभु जी से के साथ गए थे डॉक्टर के पास, जो कि अंतिम था कि ऑपरेशन फिक्स करने के लिए कि बेहोश करेंगे प्रभु जी को और ऑपरेशन करेंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभुपाद जी के इस लेक्चर में ऑपरेशन की बात आई कि सुप्त अवस्था में जो है ऑपरेशन होता है और डॉक्टर पूरे कुछ भी करते हैं शरीर के साथ, औजार चलाते हैं अपने, तो उस व्यक्ति को जो है पता नहीं लगता जिसका ऑपरेशन होता है, क्योंकि तो इतने सालों से श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर में ये बात जो है मैंने सुनी नहीं थी अभी तक। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं चूँकि आप त्वचा तथा हड्डी में आ सकते हैं, ये परसों का जो श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर है उसी में से मैं बता रहा हूँ, चूँकि आप त्वचा तथा हड्डी में आ सकते हैं इसलिए आपको कभी सुख तथा कभी दुख का अनुभव होता है, परंतु यह नहीं रहेगा, अच्छा यही है कि आप इसे सहन करो। तो जैसे कि मैं देखता हूँ कि प्रभु जी को इतना दर्द भी होता है घुटने में कि वो अकड़ जाते हैं कई बार रात को, परंतु प्रभु जी मुझे नहीं उठाते, उल्टा फोन करके जो गार्ड के पास बोलते कि आ जाओ मुझे उठाने के लिए आओ, ऐसा भी मतलब जीवन में आया देखने के लिए मिला। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये दर्द जो है नहीं रहेगा इसलिए इसको सहन करो। तो 10-12 साल से जो है प्रभु जी का ऑपरेशन होने वाला था, जो कि इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि प्रभु जी मंगल आरती में आना चाहते थे कि एवरीडे की ऑपरेशन हो और अगले दिन में मंगल आरती में भी आ जाते, तो काफ़ी समय से मतलब प्रभु जी ने सहन किया। तो प्रभुपाद जी से आश्वासन मिला ये लेक्चर सुन के कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये दर्द नहीं रहेगा इसलिए इस चीज़ को जो है सहन करो कि हड्डी जो है हड्डी का और त्वचा का जो है ऑपरेशन होगा तो उसको सहन करो, इससे कष्ट नहीं रहेगा, उससे कष्ट और भी है शरीर में परंतु ये नहीं रहेगा। प्रभु जी मंगल आरती नहीं छोड़ना चाहते थे इसलिए यह बात पहले से निश्चित की गई थी कि ऑपरेशन के आगे दिन एम्बुलेंस में प्रभु जी मंगल आरती में आएंगे। आज श्री प्रभुपाद के प्रवचन में ये जो है सब मिले और भी मिले, चूँकि व्यक्ति की अपने परिवार में आसक्ति है अतः वह 4 बजे उठकर तैयार हो जाता है ताकि वह प्रातः 6 बजे की ट्रेन पकड़ सके तथा कार्यालय में जा सके। वह इतना अधिक कष्ट क्यों उठाता है? परिवार की आसक्ति है, परंतु यही आसक्ति यदि श्री कृष्ण के लिए मोड़ दी जाए तो व्यक्ति प्रातः 4 बजे श्री कृष्ण की मंगल आरती में के लिए उठ सकता है। तो प्रभु जी के अंदर मतलब इतना उत्साह था कि उन्होंने ऑपरेशन भी नहीं कराया इतने दिन से कि अब फिक्स हुई है बात, हम प्रभु के साथ कोई उनके रिलेशन में डॉक्टर था कि ठीक है प्रभु जी को जो है मंगल आरती में हम लेके आएंगे। तो ये भी मतलब बड़ा आश्चर्य की बात थी कि प्रभुपाद जी के लेक्चर में ऐसी बात होती। फिर आगे प्रभुपाद जी करें परंतु इस कार्य के लिए वह सहमत नहीं होते, मतलब अगर उसको कहें कि सुबह 4 बजे मंगल आरती में उठो इस कार्य के लिए नहीं होंगे सहमत, अपने परिवार के लिए उठ जाएंगे, उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्यालय में जाना है तो वह सुता उठता है तथा कार्यालय जाता है क्योंकि आसक्ति प्रबल है, परंतु मंदिर में नियम है कि आपको प्रातः 4 बजे से भी पहले उठना है तथा मंगल आरती के लिए तैयार होना है, परंतु हमें 300 बार घंटी बजानी पड़ती है। तो उपाय जी तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब मैं यहीं पर लिख रहा था उसी वक्त जो है घंटी बजाई पुजारी ने 8:25 पे जब मैं लिखने जा रहा था 300 बार तो घंटी बजी यहाँ आपने आपसे बहुत आश्चर्य की बात। फिर तो उपाजी कह रहे हमें 300 बार घंटी बजानी पड़ती है क्योंकि आपकी श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है, श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है इसलिए आपको आपके ऊपर बल प्रयोग होना चाहिए, हमें अपने मन को प्रशिक्षित कर, और ऐसा है भी अगर मंगल आरती के लिए हम ढिलाई छोड़ते हैं तो फिर मंगल आरती आना ही छूट जाता है, करना हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना है कि किस प्रकार यह श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हो, यह भक्ति की विधि है। तो ये बात जो है श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन में लिखी जो कि बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि ऑपरेशन जैसे होता है तो सामान्यतः ऑपरेशन होता है खाल काट के, पर हड्डी कम काटते हैं। तो इस प्रवचन में हड्डी की और खाल काटने की भी बात आई, जो भी प्रभु जी का ऑपरेशन होना है, और मंगल आरती की भी बात आ गई। तो उपाधि कह रहे हैं मंगल आरती में जरूर आना है, अगर नहीं आना है तो इसका मतलब उसकी आसक्ति है कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं, परिवार के प्रति आसक्ति है।
हरि बोल, हरि बोल। बुद्धि अहंकार, ये मन बुद्धि अहंकार, ये जो है भौतिक प्रकृति के तत्व हैं, ये भौतिक प्रकृति के तत्व हैं जिनसे शरीर बन रहा है। तो जो अहंकार जो बताया गया है वो क्या है, अपनी पहचान, जो हमारी पहचान है शरीर के प्रति, जो हमारी पहचान है, तो उसको अहंकार बताया गया है। तो इसी अहंकार को जब हम शुद्ध करते हैं तो फिर हम अपनी पहचान किस में करते हैं, कृष्ण के अंश के रूप में, जीवात्मा उसके रूप में, तो अहंकार शुद्ध हो जाता है। तो मन और बुद्धि अहंकार, ये इनको नष्ट नहीं करना होता है, बल्कि हमें इसको शुद्ध करना होता है। तो मन को हमें शुद्ध करना है, हाँ, मन की जो इच्छाएं हैं उनको शुद्ध करना है, इच्छाओं को नष्ट नहीं करना है। उसी प्रकार से अहंकार को भी नष्ट नहीं करना है, अहंकार को भी शुद्ध करना है, ठीक है ना। तो जो आध्यात्मिक शरीर है उसमें मन बुद्धि अहंकार है, लेकिन वो आध्यात्मिक है, अहंकार आध्यात्मिक है। तो अहंकार आध्यात्मिक है, है वो क्या है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, ठीक है ना। और भौतिक अहंकार है मैं शरीर हूँ, तो शरीर की फिर कई उपाधियाँ होती हैं, उनमें अपनी पहचान होती है, ठीक है ना। और कोई,
आप सभी को प्रार्थना करते हैं प्रभु जी के लिए कि कल प्रभु जी का सवा सात बजे ऑपरेशन है, सब आप सब कृपया भगवान से प्रार्थना कीजिए।
किसका, किसने हाथ उठाया था, हाँ इनको दे। गलती से स्वर्ग पहुँचे, हाँ हाँ। अगर भगवान के भक्त गलती से स्वर्ग पहुँच जाते हैं तो भी भगवान के धाम में जाने की संभावना होती है, जैसे कि नलकूबर मणिग्रीव, तो वे स्वर्ग गए, स्वर्ग गए, लेकिन उन्होंने भगवान से वरदान मांगा, भगवान से वरदान मांगा, हाँ, क्या, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, कि हमारी वाणी आपके गुणों का कथन करती रहे। तो हम कहीं भी रहें, हाँ, और भी भक्त लोग ऐसा वरदान मांगते हैं, दिवि वा भुवि वा मास्तु वास हो, मेरा चाहे स्वर्ग में वास हो, चाहे पृथ्वी में, चाहे नरक में वास हो, है ना। अब धोरत सारदार बिंदो चरणों ते मरण भी चिंतयामि, आपके चरण कमलों का मैं मरण काल तक चिंतन करूँ। तो इस तरह से हम सुरक्षित रहते हैं। तो नरक में जाएं चाहे स्वर्ग में जाएं, कहीं भी जाएं, अगर कृष्ण का स्मरण करते हैं तो हमारी सुरक्षा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से भक्त हैं, नलकूबर मणिग्रीव स्वर्ग में गए, कुबेर के पुत्र थे, अपने स्थान में चले गए, लेकिन वहाँ फिर भक्ति में वो आगे बढ़ते बढ़ते वहीं से ही फिर गोलोक धाम गए, और स्निग्धकंठ और स्निग्धकंठ और मधुकंठ, हाँ स्निग्धकंठ और मधुकंठ नाम के वो कथा गायक हो गए गोलोक धाम में। तो स्वर्ग से भी कोई व्यक्ति ऊपर जा सकता है अगर वो भक्ति का वरदान मांगता है। तो स्वर्ग में रह करके भी वो भोगों में आसक्त नहीं होगा, और वो भक्ति करता रहेगा और भगवान के धाम जा सकता है, तो ऐसा भी है। हाँ, प्रभुपाद ने जयानंद प्रभु को भी पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि या तो तुम भगवान के धाम जा चुके हो, और अगर तुम्हारे अंदर कुछ कामना अगर कुछ बनी रही तो स्वर्ग में तुम जा करके फिर वहाँ से भगवान के धाम में जाओगे, तो ऐसा जयानंद प्रभु को भी प्रभुपाद ने पत्र लिखा था, ठीक है। और कोई, हाँ जी, अच्छा पहले इधर, इनका प्रश्न कि अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ है या राजसूय यज्ञ श्रेष्ठ है, ये दोनों ही जो है राजाओं के द्वारा होते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति जो है भगवान का नाम लेता है पवित्र भाव से, तो उसको जो है हजारों अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, तो ऐसा कुछ कमी नहीं है कि उसको उसको किए बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो जो बिल्कुल निर्बल हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो वे तो कृष्ण की शरण लेंगे, तो उनको अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ सब सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है ना। लेकिन राजाओं के लिए राष्ट्र यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ ये दो यज्ञ होते हैं जो कि मतलब करें तो वो ही कर सकता है जो कि पूरी पृथ्वी में जो है सब राजाओं को जीत सकता है। राष्ट्र यज्ञ में भी यही होता है, उसमें घोड़ा नहीं छोड़ा जाता, लेकिन राजा की ओर से सेना जाती है और उनके कोई सेनापति जाते हैं और वो कहते हैं कि हर राजा से कहते हैं कि आप जो है उसमें आइए और आप कर दीजिए। तो राजाओं को बुलाया जाता है और उनसे ही यज्ञ का सब कार्य कराया जाता है, जैसे कि सफाई है, पत्तल उठाना, ये नौकरों का जितना कार्य है सब राजाओं से कराया जाता है। तो राष्ट्र यज्ञ वो होता है। तो राष्ट्र यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ ये दो यज्ञ जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक ऐसा राजा जो कि पूरी पृथ्वी में जो सबको जीत सकता है वो कर सकता है, लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उससे बढ़कर कुछ नहीं है, है ना। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलो वक्षति प्रत्यहम नित्यम यज्ञायुतम पुण्यम कोटि तीर्थ समद्भवम। जो प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण बोलता है तो उसको रोज 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है, करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो कृष्ण के नाम में मुझे तो आपको ना तो अश्वमेध यज्ञ करने की जरूरत है ना राष्ट्रीय करने की जरूरत है, आपकी छुट्टी है। हरे कृष्ण का जाप करो, ठीक है। और किसी का, किसी ने हाथ उठाया था, उधर उधर दे तो माइक। किसी को दे दो, ये हाथ से ले जाएंगे ना, इतना लंबा हाथों हाथों पहुंचा दो।
मेरा प्रश्न भी अभी आपने जैसे बोला कि हमें नहीं करने की जरूरत है राशि और इसी से रिलेटेड था कि भगवान को प्रसन्न करने की सबसे अच्छी विधि है कि भक्ति शुद्ध भक्ति करते हैं। तो जैसे आपने भी प्रवचन में बताया कि अश्वमेध यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना ही है, तो यहाँ पे क्योंकि यज्ञ दादा की उनके द्वारा की जाती है विशेषकर, तो राजा इसमें भगवान को किस तरह से प्रसन्न करता है? क्या ये है कि वो पूरी पृथ्वी में धर्म की स्थापना करके करता है या क्या उद्देश्य क्या होता है?
हाँ हाँ, राजा का उद्देश्य यही होता है, वो चूँकि भगवान को पूरी तरह से समर्पित है और जब वो अपना आधिपत्य जमाता है सब लोगों के ऊपर, तो उसमें वो भावना यही होती है। युधिष्ठिर महाराज भी राष्ट्रीय करना चाहते हैं,
तो किसी ने पूछा कि आप क्यों करते हैं, तो बोले कि हम इसलिए कर रहे हैं पूरी दुनिया को हम दिखाएं कि जो आपके आशक होते हैं उनके पास कितनी संपत्ति।